लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर, हम आपसे समुद्री तटों पर कठिन परिश्रम करने वाले तथा वहीं पर जीवन यापन करने वाले समस्त नाविकों, मछुआरों और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना से उन्हें समर्थन मिले। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं रविवारीय आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, हम अपने जीवन के कठिन परिस्थितियों में ईश्वर को अपने निकट देखने की चाह रखते हैं। हम उनके पास आते और उनसे विनय प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन की विकट परिस्थितियां हो सके तो टल जाएं। हम ईश्वर की दुहाई देते हुए उनके आगे शीश नवाते और माथा टेकते हैं। ऐसा बहुधा तब होता है जब हम अपने को मृत्यु से भयभीत और आतंकित पाते हैं। 19वें सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए पाठ हमारे लिए भय की स्थिति का जिक्र करते और ऐसी परिस्थिति में सुरक्षा हेतु ईश्वर को पुकारने का हाल प्रस्तुत करते हैं। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों को सुनते हुए अपने हृदय के मनोभावों को देखें कि हम अपने को यीशु ख्रिस्त के संग किस रूप में संयुक्त करते हैं। क्या हम उन्हें केवल अपनी विपत्ति की घड़ी में पुकारते हैं? क्या हम सिर्फ अपने संकट और जीवन के कठिन समय में ही उनके पास भागे आते हैं, या हम उन्हें अपने सुख दुख भय मुक्त परिस्थिति में भी याद करते और उनके निवास स्थल उनसे मिलने हेतु आते हैं?
इसके तुरंत बाद ईसा ने अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार चले जाएं। इतने में वह स्वयं लोगों को विदा कर देंगे। ईसा लोगों को विदा कर एकांत में प्रार्थना करने के लिए पहाड़ी पर चढ़े। संध्या होने पर वह वहां अकेले थे। नाव उस समय तट से दूर जा चुकी थी। वह लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। रात के चौथे पहर ईसा समुद्र पर चलते हुए शिष्यों की ओर आए। जब उन्होंने ईसा को समुद्र पर चलते हुए देखा तो वे बहुत घबरा गए और यह कहते हुए, यह कोई प्रेत है, डर के मारे चिल्ला उठे। ईसा ने तुरंत उनसे कहा, ढाढ़स रखो, मैं ही हूँ, डरो मत। पेत्रुस ने उत्तर दिया, प्रभु, यदि आप ही हैं तो मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। ईसा ने कहा, आ जाओ। पेत्रुस नाव से उतरा और पानी पर चलते हुए ईसा की ओर बढ़ा, किंतु वह प्रचंड वायु देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला उठा, प्रभु मुझे बचाइए। ईसा ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा, अल्पविश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? वे नाव पर चढ़े और वायु थम गई।
श्रोताओ, सुसमाचार के सुमधुर जीवनदायी वचन हमें न केवल अपने मुश्किल की घड़ी और भय की स्थिति में मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त की ओर आने को प्रेरित करें, वरन हम सदैव यीशु ख्रिस्त से अपने को संयुक्त रखें, जिससे हम अपने विकट परिस्थिति में भी विचलित हुए बिना जीवन की राहों में आगे बढ़ सकें। क्योंकि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई। सुख में सुमिरन जे करें, उसे दुख काहे का होए। श्रोताओ, राजाओं के पहले ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ नबी इलियास का मृत्यु से भागने की बात कहता है। वह होरीब पर्वत की गुफा में अपने को छुपाए रखते हैं, क्योंकि उनकी भविष्यवाणी के कारण जेजबेल उसे मार डालना चाहता है। जीवन की ऐसी परिस्थिति में वह ईश्वर के निर्देशानुसार होरेब पर्वत में उनसे मिलने की प्रतीक्षा करते हैं। ईश्वर अपने नबी इलियास से मिलने आते हैं, लेकिन प्रचंड आंधी जिसके कारण पहाड़ फट गए और चट्टानें टूट गईं, इलियास प्रभु को उस आंधी में नहीं पाते हैं। इसके बाद भूकंप हुआ और फिर अग्नि दिखाई दी, लेकिन प्रभु उसमें भी नहीं थे। फिर मंद मंद वायु की सरसराहट सुनाई दी, जिसे सुनकर नबी इलियास अपना मुंह ढक लेते हैं, क्योंकि इस धीमी धीमी शीतल वायु में ईश्वर अपने नबी से मिलने हेतु आते हैं। श्रोताओ, ईश्वर से हमारे मिलन की चाह उनके आने की आहट को सुनने हेतु हमें निमंत्रण देता है। ईश्वर विभिन्न रूपों में हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन इसका एहसास हम अपने जीवन में तब करते हैं जब हम शांतिमय स्थिति में बने रहते हैं। ईश्वर की उपस्थिति को हम दुनिया के शोरगुल में नहीं, वरन एकांत वातावरण में अनुभव करते हैं। यही कारण है कि आध्यात्मिक साधना के दौरान हमें शांत रहने का निर्देश दिया जाता है, जिससे हम उनकी बातों को सुन सकें, ईश्वरीय उपस्थिति का अनुभव कर सकें। हम स्वयं इस बात को यीशु ख्रिस्त के जीवन में पाते हैं। वे प्रार्थना करने अर्थात अपने पिता से मिलने और बातें करने हेतु एकांत पर्वत में चले जाते हैं। अपने पिता प्रदत्त कार्यों को शुरू करने के पूर्व उन्होंने मरुभूमि में 40 दिनों तक एकांतवास जीवन व्यतीत किया। इस भांति उन्होंने अपने पिता के संग अपने संबंध को मजबूती प्रदान की और उनकी योजना को अपने लिए जाना। शांति में ईश्वर से हमारे मिलन की बात पर बल देते हुए यीशु अपने शिक्षा में कहते हैं कि तुम द्वार बंद कर एकांत में प्रार्थना करो, क्योंकि पिता जो एकांत को भी देखते हैं तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे। यीशु ख्रिस्त ने जिन बातों का अनुपालन स्वयं अपने जीवन में किया, उन्हीं बातों की शिक्षा वे हमें देते हैं, जिनका अनुसरण कर हम अपने को उनके निकट पाते और अपने में अनंत खुशी और शांति का अनुभव करते हैं। ईश्वर से शांति में मिलन की सच्चाई, जिसे आज का दूसरा पाठ हमारे लिए व्यक्त करता है। संत पौलुस रोमियों के नाम पत्र में कहते हैं, मेरा अंतःकरण पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर मुझे विश्वास दिलाता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। श्रोताओ, हमारे हृदय की गहराई हमारा अंतःकरण है, जहां ईश्वर हमसे बातें करते और हमें सच्चे और अच्छे कार्यों हेतु प्रेरित करते हैं। यही वह स्थल है जहां से ईश्वरीय सत्यवाणी ध्वनित होती, जो सदैव हमें सच्चाई का अनुसरण हेतु निर्देशित करती है। हमारा अंतःकरण जहां हमारी मुलाकात ईश्वर से होती है, हमसे शांति और एकता में बने रहने की मांग करती है, जिससे हमारा साक्षात्कार ईश्वर से हो सके। श्रोताओ, आज का सुसमाचार हमें ईश्वर से मिलन, उसके लिए जरूरी बातें और उन बातों के अनुसरण में हमें मिलने वाली आध्यात्मिक खुशी को व्यक्त करता है। यीशु एकांत में अपने पिता से बातें कर चौथे पहर समुद्र में चलते हुए अपने चेलों के पास आते हैं। चेले उन्हें प्रेत समझकर भयभीत चिल्लाने लगते हैं, लेकिन यीशु अपनी उपस्थिति से उन्हें अवगत कराते और उनका ढाड़स बंधाते हैं। तो वहीं पेत्रुस उत्साहित होकर पानी में उनके पास आने की मांग करता और अपने संदेह के कारण डूबने लगता है। श्रोताओ, यह दैनिक जीवन में हमारी परिस्थिति का हाल प्रस्तुत करता है। ईश्वर से हमारा संबंध मजबूत नहीं होने के कारण जीवन की छोटी छोटी कठिनाइयां हमें विचलित कर देती हैं। कई बार ईश्वरीय अनुभूति के कारण उत्साह पूर्वक अपने कार्यों को करते हुए हम अपने जीवन में आगे बढ़ते, लेकिन पुनः कठिनाइयां रूपी लहरें और तूफान हमें संदेह के घेरे में डाल देती हैं और हम डगमगा जाते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी यीशु हमारे साथ रहते और हमारी सहायता करते हैं। वे हमें नहीं डरने को कहते हैं। अपने जीवन के समुद्र में हम तब तक डगमगाते रहते हैं जब तक यीशु हमारे जीवन रूपी नाव के खेवनहार नहीं बनते। आइए हम अपने हृदय के अंतःस्थल में उतरकर मुक्तिदाता यीशु के संग अपने संबंध को नवीकृत करें, शांति में उनकी बातों को सुने और उनसे बातें करें, जिससे हम उन्हें जान सकें और उन्हें संपूर्ण रूप से अपने में अंगीकृत कर सकें।
वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने प्रार्थना एवं भ्रम के बीच अंतर स्पष्ट किया। उन्होंने 8 अगस्त के ट्वीट संदेश में लिखा, हम सभी को पिता की जरूरत है जो अपना हाथ हम पर बढ़ाते हैं। उनसे प्रार्थना करना, उन्हें पुकारना भ्रांति नहीं है। भ्रांति का अर्थ है यह सोचना कि हम उनके बिना कर सकते हैं। प्रार्थना आशा की आत्मा है। रोम के परमधम पीठे उर्बनियन विश्वविद्यालय ने अफ्रीका, एशिया और ओशिनिया में यह जानने के लिए एक सर्वेक्षण की पहल की है कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान लोगों ने अपने विश्वास को किस तरह जिया एवं कलीसिया के करीब रहे। सर्वेक्षण की अवधि 29 जून से 15 अगस्त तक है। लुस मिशनाले पत्रिका के निदेशक एलियस फ्रैंक ने सर्वेक्षण जारी किया है। उन्होंने कहा है कि हम कार्तिक रविवार मिस्सा बलिदान में भाग लेने, पाप स्वीकार करने और अन्य धार्मिक अभ्यासों के आदि हैं, किंतु कोविड-19 ने बिना किसी पूर्व सूचना के कई देशों में विश्वास के जीवन को चकनाचूर कर दिया है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने हेतु लिए गए उपायों के कारण गिरजाघर बंद हो गए हैं और विश्वासी संस्कारों से वंचित हैं। इस नई परिस्थिति में जी रहे विश्व भर के कार्तिकों का सर्वेक्षण परमधम पीठे उर्बनियन विश्वविद्यालय यह जानने की उम्मीद से कर रहा है कि गिरजाघरों के बंद होने पर विश्वासियों की क्या प्रतिक्रिया है। सर्वेक्षण में लोक धर्मी, पुरोहित और धर्म सामाजिक शामिल हैं। एल साल्वाडोर के धर्माध्यक्ष एलियस सामुएल बोलानोस अवेलर ने एक बयान जारी कर एवं वीडियो प्रकाशित कर जानकारी दी है कि ओस्कर रोमेरो मेजर सेमिनरी के रेक्टर फादर रिकार्डो अंतोनियो कोस्ट की हत्या हो गई है। धर्माध्यक्ष ने हत्या की निंदा की है तथा बतलाया है कि फादर रिकार्डो एक अच्छे और मिलनसार व्यक्ति थे। वे अपने लोगों एवं गुरुकुल छात्रों के प्रशिक्षण एवं शिक्षा तथा विश्वासियों की सेवा के लिए समर्पित थे। धर्माध्यक्ष ने कहा है कि एक अच्छे पुरोहित के निर्दोष खून ने एल साल्वाडोर की भूमि को पुनः एक बार सिंचित किया है। उन्होंने याद किया है कि यह वर्ष संत ओस्कर रोमेरो ब्रदर कोस में एवं उत्तरी अमेरिका की 4 महिला धर्म सामाजिकों की शहादत का 40वां वर्ष है। धर्माध्यक्ष ने कहा है कि फिर एक बार हमारा धर्म प्रांत अपने रेवर के लिए समर्पित एक अच्छे चरवाहे के निर्दोष खून से कलंकित हुआ है। एल साल्वाडोर टाइम्स में बतलाया गया है कि फादर रिकार्डो की हत्या अपराधियों द्वारा बंदूक से किया गया जब वे एक रैली में जा रहे थे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संघीय सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया है कि देश के वरिष्ठ नागरिकों पर कोविड-19 महामारी के दौरान विशेष ध्यान दिया जाए। 4 अगस्त को अपने निर्देशों में शीर्ष अदालत ने कहा कि बुजुर्गों को नियमित रूप से पेंशन का भुगतान किया जाना चाहिए और कोरोना वायरस के मद्देनजर दवाइयां, मास्क, सैनिटाइजर एवं अन्य आवश्यक सामान दिए जाने चाहिए। भारतीय कार्तिक धर्मदर्श सम्मेलन के स्वास्थ्य विभाग के सचिव फादर जूलियस अम्ला ने उनका समाचार से कहा, जैसा कि हम सभी जानते हैं, बच्चे और बुजुर्ग बीमारी के सामने कमजोर हैं, क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक शक्ति कम है। अतः सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश की सराहना की जाती है।
सामाजिक न्याय रविवार 30 अगस्त के पहले ऑस्ट्रेलिया के कैथोलिक धर्माध्यक्षों ने एक बयान जारी कर सभी को कोविड 19 के तहत मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। ऑस्ट्रेलिया के कैथोलिक धर्माध्यक्ष विश्वासी समुदायों, सरकारों और आम लोगों को मानसिक स्वास्थ्य की प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, खासकर कोविड 19 महामारी के इस दौर में जब लोगों में चिंता और निराशा की भावनाएं पैदा हो रही हैं। 30 अगस्त को मनाए जाने वाले सामाजिक न्याय रविवार के मद्देनजर ऑस्ट्रेलियाई कैथोलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन ACBC ने एक बयान जारी किया जिसका शीर्षक है, ऑस्ट्रेलिया में मानसिक स्वास्थ्य के साथ पूर्ण जीवन जीना। सामाजिक न्याय के बयान को जारी करते हुए सामाजिक न्याय मिशन और सेवा के लिए ACBC आयोग के लिए धर्माध्यक्षों के प्रतिनिधि और सिडनी के सहायक धर्माध्यक्ष टेरेस ब्रेंडी ने सभी कैथोलिकों को बयान के संदेश और चुनौतियों का सामना करने को कहा। धर्माध्यक्ष ब्रेंडी ने कहा, यह कोविड 19 महामारी के संदर्भ में एक सामयिक संदेश है। महामारी हमारे सदस्यों, स्कूलों और समुदायों के कई सदस्यों को प्रभावित कर रही है। चिंता और निराशा की व्यक्तिगत भावनाओं को हम सभी इस समय साझा करते हैं। यह सभी के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए और अधिक जागरूक एवं सक्रिय बनने का अवसर प्रदान करता है। ऑस्ट्रेलिया में कैथोलिक कलीसिया सरकारों और नीति निर्माताओं की प्रतिबद्धता की मांग करती है ताकि बहुत से लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को बचाया जा सके। संत पापा फ्रांसिस का हवाला देते हुए बयान में कहा गया कि हमारे समाज की सामान्य प्रतिबद्धता के परीक्षण में हम उन लोगों की देखभाल करते हैं जो सबसे कमजोर और वंचित हैं। उधर बेरूत शहर में मंगलवार को एक घातक विस्फोट हुआ, इसको लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। गुरुवार को बेरूत शहर में प्रदर्शनकारियों ने सभी सड़कों को जाम कर दिया और वे सुरक्षा बलों से भिड़ गए। संसद भवन के पास दर्जनों लोगों पर आंसू गैस दागकर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। मंगलवार के विनाशकारी विस्फोट से जनता नाराज है जिसमें कम से कम 150 लोग मारे गए और लगभग 5000 अन्य घायल हो गए हैं। बंदरगाह के एक गोदाम में 2013 के बाद से 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट को बिना किसी सुरक्षा के रखा गया था जिसका विस्फोट हुआ। विस्फोट ने इमारतों को नष्ट कर दिया और शहर के अधिकांश हिस्सों को नुकसान पहुंचाया, जो 2 मिलियन से अधिक लोगों का घर है। लगभग 3 लाख लोग अब बेघर हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष यूनिसेफ ने कहा कि विस्फोट से लगभग 80,000 बच्चे विस्थापित हुए हैं। संगठन ने चिंता व्यक्त की है कि कई बच्चे आघात का सामना कर चुके हैं और सदमे में हैं। संत इजिदियो समुदाय ने त्रासदी पर अपना दुख व्यक्त किया, एक बयान में कहा कि वे लेबनान के लोगों के साथ खड़े हैं। हम लेबनान के लिए प्रार्थना करते हैं और हम लेबनानी लोगों के करीब हैं और उनके देश के पुनर्जागरण का समर्थन करते हैं। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।